नमस्कार साथियों, मैं संतोष कुमार खरवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी में 11वीं कक्षा के लिए आज का पाठ है मीरा। आज आप मीरा के दूसरे पद के संबंध में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप मीरा के जीवन के संबंध में संक्षेप में जान लें। मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवयित्री थी, जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में बहुत ही लोकप्रिय है। भजन और स्तुति की रचनाएं कर आमजन को भगवान के और समीप पहुंचाने वाले संतों और महात्माओं में मीराबाई का स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। मीरा का संबंध एक राजपूत परिवार से था। वे राजपूत राजकुमारी थी, जो मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। उनकी शाही शिक्षा में संगीत और धर्म के साथ साथ राजनीति व प्रशासन भी शामिल थे। एक साधु द्वारा बचपन में उन्हें कृष्ण की मूर्ति दिए जाने के साथ ही उनकी आजन्म कृष्ण भक्ति की शुरुआत हुई। प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेवाड़ राजकुल की राजकुमारी थी। विद्वानों में इनकी जन्म तिथि के संबंध में मतैक्य नहीं है। कुछ विद्वान इनका जन्म 1430 ईस्वी मानते हैं और कुछ 1498 ईस्वी। मीराबाई मेड़ता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। उनका जीवन बड़े दुख और कष्ट में व्यतीत हुआ था। मीराबाई जब केवल 2 वर्ष की थी, उनकी माता की मृत्यु हो गई, इसलिए उनके दादा राव दूदा उन्हें मेड़ता ले गए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। राव दूदा एक योद्धा होने के साथ साथ भक्त हृदय व्यक्ति भी थे और साधु संतों का आना जाना इनके यहाँ लगा ही रहता था, इसलिए मीरा बचपन से ही धार्मिक लोगों के संपर्क में आती रही। इसके साथ ही उन्होंने तीर तलवार जैसे शस्त्र चालन, घुड़सवारी, रथ चालन आदि के साथ साथ संगीत तथा आध्यात्मिक शिक्षा भी पाई। मीराबाई के बालमन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। उनका कृष्ण प्रेम बचपन की एक घटना की वजह से अपने चरम पर पहुंचा था। बाल्यकाल में एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियाँ छत से खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने उपहास में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि यही तुम्हारे दूल्हा हैं। यह बात मीराबाई के बालमन में एक गांठ की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। मीराबाई के अद्वितीय गुणों को देखकर ही मेवाड़ नरेश राणा संग्राम सिंह ने मीराबाई के घर अपने बड़े बेटे भोजराज के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भोजराज के साथ मीरा का विवाह हो गया। इस विवाह के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया था, लेकिन परिवार वालों के अत्यधिक बल देने पर वह तैयार हो गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और विदाई के समय श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई, जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। मीराबाई ने लज्जा और परंपरा को त्याग कर अनूठे प्रेम और भक्ति का परिचय दिया। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही मीराबाई के पति भोजराज का निधन हो गया। संभवतः उनके पति की युद्धोपरांत घावों के कारण मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ससुराल में मीराबाई पर कई प्रकार के अत्याचार किए जाने लगे। सन 1527 ईस्वी में बाबर और सांगा के युद्ध में मीरा के पिता रत्न सिंह मारे गए और
लगभग तभी श्वशुर की भी मृत्यु हो गई। सांगा की मृत्यु के पश्चात भोजराज के छोटे भाई रत्न सिंह सिंहासनासीन हुए। अतएव निश्चित है कि अपने श्वशुर के जीवन काल में ही मीरा विधवा हो गई थी। सन 1531 ईस्वी में राणा रत्न सिंह की मृत्यु हुई और अपने सौतेले भाई विक्रमादित्य राणा बने।
लौकिक प्रेम की अल्प समय में ही इतिश्री होने पर मीरा ने पारलौकिक प्रेम को अपनाया और कृष्ण भक्त हो गई। वे सत्संग, साधु संत दर्शन और कृष्ण कीर्तन के आध्यात्मिक प्रवाह में पढ़कर संसार को निस्सार समझने लगी। उन्हें राणा विक्रमादित्य और मंत्री विजयवर्गीय ने अत्यधिक कष्ट दिए। राणा ने अपनी बहन उदाबाई को भी मीरा को समझाने के लिए भेजा, पर कोई फल न हुआ। वे कुल मर्यादा को छोड़कर भक्त जीवन अपनाए रही। मीरा को स्त्री होने के कारण, चित्तौड़ के राजवंश की कुल वधू होने के कारण तथा विधवा हो जाने के कारण अपने समाज तथा वातावरण से जितना विरोध सहना पड़ा, उतना कदाचित ही किसी अन्य भक्त को सहना पड़ा हो। उन्होंने अपने काव्य में इस पारिवारिक संघर्ष के आत्मचरित मूलक उल्लेख कई स्थानों पर किए हैं। अब मीरा के पद को भजन के रूप में सुनते हैं। अब एक बार पद को पढ़ते हैं और फिर उसका सरलार्थ जानते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राना भेजिया, पीवत मीरा हाँसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रस्तुत पद में मीरा की अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। उन्होंने कृष्ण के अनुराग में लोकलाज और घर परिवार की मर्यादाएं तोड़ दी है। वे अपने प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई कहती है, हे प्रभु, तुम्हारी यह दासी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आपके प्रेम में नाच उठी है। अब सारी दुनिया इस प्रेम के खुले दृश्य को देख और सुन ले। यह सच है कि मैं अपने प्रभु की स्वयं ही दासी बन गई हूँ, अर्थात अपनी इच्छा से कृष्ण की दीवानी हो गई हूँ। लोग मुझे पागल हो गई बताते हैं। मेरे इस खुले कृष्ण प्रेम पर मेरी सास मुझे कुल कलंकनी कहती है। वह कहती है कि मैंने यह कर्म करके अपने कुल की छवि को मिट्टी में मिला दिया है। राणा जी ने मुझे मार डालने के लिए विष का प्याला भरकर भेजा। मैं उस प्याले को भी सहर्ष पी गई। मीरा कहती है, मेरे प्रभु तो गिरधर गोपाल कृष्ण है, मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन सुलभ हो गए हैं। पद की विशेष बातों को जानते हैं। इस पद में मीरा पर ढाए गए अत्याचारों का संकेत मिलता है। मीरा की कृष्ण के प्रति अटूट निष्ठा व्यक्त हुई है। इसे पढ़कर मंदिर में तन्मय होकर नाचती हुई मीरा का चित्र आँखों के सामने सजीव हो उठता है। कृष्ण के अनुराग में मीरा कृष्ण को नए नए नामों तथा विशेषणों से पुकारती है, जैसे नारायण, गिरधर, नागर, अविनाशी। अनुप्रास की छटा जगह जगह दर्शनीय है, जैसे कहे कुलनासी, प्रभु गिरधर नागर। संगीत, लय और माधुरी की दृष्टि से यह पद बहुत ही मनोरम बन पड़ा है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। अब कुछ प्रश्नोत्तर की भी चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है, लोग मीरा का कृष्ण के प्रति अनन्य भक्तिभाव देखकर उसे दीवानी या पगली कहते हैं। यह मीरा की भक्ति का सम्मान है। मीरा ने भक्ति प्रकट करने के लिए अपना राज परिवार छोड़ा, कुल मर्यादाएं छोड़ी, जग की निंदा सही और मंदिर में प्रभु के सामने भजन गाती फिरी। इसी दीवानगी के कारण लोगों ने उसे बावरी कहा। दूसरा प्रश्न है, विष का प्याला राना भेजिया, पीवत मीरा हाँसी, इसमें क्या व्यंग छिपा है? इस पंक्ति में मीरा ने अपने कुटुंबी जनों पर व्यंग किया है। वे उसकी भक्ति भावना में पाप अनुभव करते हैं। वे उन्हें कृष्ण के प्रति प्रेम में देखकर उन लोगों को लज्जा आती है, इसलिए राणा ने उन्हें जान से मारने के लिए विष का प्याला भेजा, परंतु मीरा ने उसे भी स्वीकार कर लिया। वे उस प्याले को हंसते हंसते पी गई, अर्थात उन्होंने अपने कुटुंब जनों द्वारा किए गए अपमान को भी पी लिया, परंतु भक्ति पथ से नहीं डिगी। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है? मीरा जगत की लीला को व्यर्थ मानती है। वह सांसारिक सुख दुख को असार मानती है, फिर भी लोग उसमें लिप्त रहते हैं, यह देखकर मीरा रोती है। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग और समाज और न्यात की ऐसी धारणाएं क्यों हैं? समाज तथा कुटुंब की धारणाएं सदा भिन्न हुआ करती है। कुटुंब की धारणा अधिक संकुचित होती है। कुटुंबी जनों में राग द्वेष की प्रमुखता होती है। कभी वे मोहवश अपने प्रियजन को अधिक महान सिद्ध करते हैं, तो कभी द्वेषवश उसे बिल्कुल बेकार सिद्ध कर देते हैं। मीरा के कुटुंबी जनों मीरा की दीवानगी को बुरा मानते थे। वे इसे अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध मानते थे कि मीरा मंदिर में जाकर नाचे गाए, इसलिए उन्होंने उसे कुल विनाशिनी कहा। समाज के लोगों ने उसके सच्चे प्रेम को देखा। उन्हें मीरा के व्यवहार में दीवानगी तो दिखाई दी, किंतु किसी प्रकार का कलंक नहीं दिखाई दिया। अंतिम प्रश्न है, कुल की कहानी का क्या आशय है? कुल की कहानी का आशय है परिवार की मर्यादा का विचार। मीरा राजकुल की नारी थी। तब राजकुल की महिलाओं पर बहुत बंधन थे। वे आम जनता के बीच बेपर्दा होकर नहीं चल सकती थी। उनके मंदिर में नाचने गाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इन्हीं बंधनों को कुल की कहानी कहा गया है। धन्यवाद।